നമോര്യന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയരീയാണം നമോ വജ്രായാണം നമോ ലോയേ സവ്യസാഹുണം മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗൗതമോ ഗണി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാത്യോ ജൈനധർമ്മോസ്തു മംഗളം സർവമംഗളമാംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം പ്രധാനം സർവധർമാണാം ജൈനം ജയതു ശാസനം നമശ്രീ വർദ്ധമാനായ നിർധൂതകലിലാത്മനി സാലോകാനാം ത്രിലോകാനാം യദ്വിദ്യാദർപണായതി
ज्ञानी के जीवन में सम्यक्त्व के 8 अंग होते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो ऐसा आया और इस रतनकर्ण श्रावकाचार में भी कि जैसे अंग विहीन पुरुष शोभा को प्राप्त नहीं होता और मंत्र में एक अक्षर कम हो तो मंत्र विष वेदना को दूर नहीं कर सकता, उसी प्रकार अंग रहित सम्यक्त्व कार्यकारी नहीं है, होता ही नहीं है, सम्यक्त्व होता ही नहीं है। वो एक तरीके से इस सम्यक्त्व के अंग सम्यक दृष्टि के लक्षण कहलाते हैं। यद्यपि कदाचित ये द्रव्यलिंगी में भी पाए जा सकते हैं बाहर में, लेकिन यहां जो बात चल रही है वो ज्ञानी की चल रही है। शुष्क नहीं होता उसका जीवन, उसका जीवन बाहर में अद्भुत वात्सल्य और धर्म प्रभावना से भरा होता है। स्वरूप में संशय नहीं होता, जिनेन्द्र कथित तत्व में संशय नहीं होता, ये निशंकित अंग है। धर्म का सेवन करके अर्थात वीतराग भाव का सेवन करके स्वर्ग आदि की वांछा नहीं करता।
रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि में राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं।
रत्नत्रय का पालन हो और अंत में समाधि हो, ये भावना ज्ञानी भाते हैं। इसलिए भोगों की कांक्षा नहीं होती। जब भोग को दुखदायी जानता है तो भोगों को क्यों चाहेगा। तीसरा, निर्वचिकित्सा, विचिकित्सा का परिणाम नहीं होता। ज्ञानी संयमी के मलिन शरीर को देखकर ध्यान देना, ये सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्व तो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है और उस श्रद्धा के साथ इस जाति के परिणाम संकिति को होते हैं। कहा यह जाता है कि सम्यक्त्व के अंग हैं, वास्तव में तो ज्ञानी के इस जाति के स्वभाव हैं। और उस भूमिका में वो होते ही है, उनको नहीं मुनिराजों तक को होते हैं, चर्चा आएगी इसमें। निशंकित, निकांक्षित, निर्वचिकित्सा मूल नहीं होता। जब मिथ्यात्व चला गया तो जगत की देखा देखी कार्य में नहीं प्रवर्तता। लोक मूढ़ता, धर्म मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, सटनायतन इनका त्यागी होता है। और पांचवा कल लिया था उपगुहन, अपने गुण ढकता है और दूसरे के दोष ढकता है। ध्यान देना, यदि कोई दूसरे की निंदा करता है तो वो उसी समय निंदनीय हो गया, ज्ञानी कैसे हो सकता है। ज्ञानी ये समझता है कि जिसकी जितनी योग्यता है, जिसका जैसा प्रणमन है, उसका वैसा परिणमन उस काल में होता है, समझाने का भाव अलग चीज है और योग्यता अलग चीज है। आप जानते हैं सारी जिंदगी राम लक्ष्मण के परिणाम नहीं सुधार पाए और राम गए मोक्ष और लक्ष्मण गए नरक। छाईक समकिति अपने भाई को नहीं सुधार पाया, आदिनाथ अपने पोते को नहीं सुधार पाए। क्षुभित नहीं होना विश्व को देखकर, विश्व की व्यवस्था ही ऐसी है। आध्यात्मिक पुरुष वो होता है जो जगत को देखकर क्षुभित नहीं होता, हिमालय की तरह शांत होता है एकदम। दुनिया तो दुनिया के ढंग से चलेगी, इसलिए सहज कह देने से दोष मिट जाएगा ऐसा नहीं है। कह देने से ये जरूर मालूम पड़ जाएगा कि तुम दोषी हो। याद रखना, निर्दोष दूसरे के दोष नहीं कहता, तो दोषी को दोष कहने का क्या अधिकार है? निर्दोष सर्वज्ञ है। जब सर्वज्ञ निर्दोष ही व्यक्तिगत किसी को कुछ नहीं कहते, तो दोष युक्त संसार में दोष है तभी तो संसार में है, निर्दोष होता तो संसार में कहां होता। आज जो अंग चलेगा वो है स्थितिकरण। ये उपगूहन और स्थितिकरण एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। समकित समझ में आ रहा है? या पास आस में कहीं ऑफिस है क्या तुम्हारा? अच्छा अच्छा, अपने अश्विन भाई है ना पंडित जी साहब, उनके पुत्र हैं, उनके छोटे भाई के, बड़े भाई के। स्थितिकरण पढ़िए 16 नंबर पे। दर्श ये यही है ना, हाँ, हवे स्थितिकरण नामना सम्यक तुना छठा अंग कहवा वालो श्लोक कहे छे। दर्शनात् चरणात् वापी, बोलिए, चलिताम धर्म बत्सलही प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञयी। स्थितिकरण मुच्यते। कोई पुरुष पहला सम्यक दर्शन सहित श्रद्धानी तथा व्रत संयम सहित चारित्र धारक होए, पछी कोई प्रवण कसायना उदेती खोटी संगति थी, रोगनी तीव्र वेदना थी, गरीब आई थी, मिथ्या उपदेश थी कि मिथ्या दृष्टि ना मंत्र तंत्रादिक चमत्कार जोई ने सत्यार्थ श्रद्धा के आचरण थी डगी जतो होए, तेने धर्म थी डगी जतो जानी बात्सल्य धर्म वालो धर्मात्मा प्रवीण पुरुष तेने उपदेश आदिक बड़े फरी सत्यार्थ श्रद्धा के चारित्र रूप धर्म मार्ग मा स्थिर करे तेने स्थितिकरण अंग कहवाए छे। थोड़ा बड़ा है। कोई पुरुष पहले संकिति था, ज्ञानी था, धर्मात्मा था, अब वर्तमान में किसी पाप के उद्देश्य अथवा गलत संगति से अथवा तंत्र मंत्र आदि का चमत्कार देखकर अथवा शरीर में रोग आदि हो जाने से अथवा गरीब आई इत्यादि से, कभी कभी व्यक्ति ऐसा होता है, ऐसे एग्जाम्पल है मेरे पास, 45-45 वर्ष गुरुदेव को सुना और गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद वो तत्व छोड़ दिया। नाम नहीं लेंगी, है इस जाति का उदय, ऐसा लगने लगा कि इसलिए कहा जाता है कि तत्व को निर्णय करके स्वीकार करना, निर्णय करके, और जो निर्णय करके स्वीकार किया तो फिर तत्व कभी नहीं छूटेगा। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति खूब धर्म कर रहा है, दो दो टाइम स्वाध्याय सुनता है, तीन तीन टाइम स्वाध्याय सुनता है, सामायिक करता है, स्वाध्याय लिखता है, पढ़ता है, विधान करता है, निवृत्ति ले ली, और फिर भी हो सकता है कि पूरी जिंदगी पाप का उदय झेले। ये कुछ जरूरी नहीं है कि इस जन्म में की गई पुण्य कर्म इसी जन्म में उदय में आए, जरूरी नहीं है। तो व्यक्ति को कभी कभी अंदर से खीज हो जाती है। क्या खीज हो जाती है? अच्छा, अपन तो धर्म नहीं करते थे तब ज्यादा सुखी थे, हम धर्म नहीं करते थे जब ज्यादा सुखी थे, इन धर्मात्माओं के चक्कर में फड़ के माता अलग फट गया और पाप का उदय अलग आ रहा है। तो कई लोग यही सोचते हैं कि क्या हमारा पुण्य का उदय अगले जन्म में ही आएगा क्या? ऐसा जानकर धर्म से च्युत हो जाते हैं। एक भगवती आराधना ग्रंथ है, हमने मंगलायतन में आद्योपांत चलाया उसे, और आप जानते 1800-1900 पेज का ग्रंथ है। हाँ, आद्योपांत एक ही अक्षर उसको, और उसमें ऐसा लिखा, इस काल में धर्मात्मा पुरुषों की विडंबना दशा देखकर भोले जीव धर्म से च्युत होंगे। नहीं आया समझ में? इस काल में धर्मात्मा पुरुषों की विडंबना रूप दशा देखकर भोले लोग धर्म से च्युत होंगे। वो ये सोचेंगे, लो भैया धर्मियों की तो ऐसी स्थिति होती है, इसका मतलब धर्म करना बेकार है। और आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, ऐसा तक लिखा है रतनकंड श्रावकाचार्य में। तो इस काल में सच्चा, इस काल में धर्मी राजा नहीं होगा, जो जिन धर्म में प्रवीण होगा वो राजा इस काल में नहीं होंगे। ये तक लिखा कि जैसे पहले राजकुल इत्यादि होते थे ना, उस तरह के राजकुलों में चक्रवर्ती आदि इत्यादि, ऐसी जीव इस काल में पैदा नहीं होंगे। तो इस काल में मैं कहता हूं चौथे काल से भी ज्यादा पुरुषार्थ है इस काल में श्रद्धा टिकाई रखना, क्योंकि चारों तरफ विपरीतता ही विपरीतता है, विपरीतता विपरीतता। और ऐसे समय में जिन शासन के प्रति अडग श्रद्धा हो कि जैसा जिनेन्द्र ने कहा है वही सत्य है, वो बहुत बड़ा सूरवीर है, बहुत बड़ा सूरवीर। भैया समझ में आ रहा है? यहां तो क्या कह रहे हैं, किसी भी कारण से च्युत हो जाए बेचारा। अरे लोक में पापी पापी को स्थितिकरण करता है। मान लो दो शराबी एक साथ मधुशाला में बैठ के शराब पीते हो, और मान लो वो 15 दिन से एक शराबी नहीं आया हो, तो दूसरा शराबी उसके घर चला जाए उसको बुलाने के लिए। ए भाई, बोले शराब के लिए पैसे नहीं, बोले मैं दूंगा, आओ चलो। लोक में व्यक्ति भ्रष्ट करने के लिए कैसा उदार होता है। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, इस सिगरेट बीड़ी पीने वालों की उदारता देखो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। यदि एक व्यक्ति बस में ट्रेन में बीड़ी सिगरेट पी रहा हो, को कभी अकेला नहीं पिएगा, पड़ोसी को पूछेगा पिएंगे आप, और एक मिनट में मित्रता हो जाती है उसकी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्र आचार्य देव ऐसा कहते हैं, निश्चय से अपने को स्वरूप में स्थिर करना, यह स्थितिकरण है। क्योंकि जो अपने को स्वयं स्थितिकरण नहीं कर सकता वो दूसरे को स्थितिकरण कैसे करेगा। और ये बहुत बड़े उदार वृत्ति का काम है। ऐसे व्यक्ति को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये बात अलग है कि वो बंध भाव है, वो आश्रम भाव है, ज्ञानी उसकी इच्छा नहीं करते। लेकिन सहजी जिसके चित्त में ज्ञानी धर्मी को स्थित करने का भाव आता है धर्म में। थोड़ी सी हिस्ट्री संबंधी बातें हैं। आप जानते हो जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय उस इस देश के अंदर एक भी क्रिश्चियन हॉस्पिटल नहीं था। पहले 2-4 अंग्रेजों ने बनाए होंगे, वो होंगे। इसके बाद यहां क्रिश्चियन बहुत बढ़ गए, और इतने बढ़ गए कि आज आप देखो कि जबरदस्त क्रिश्चियन और बौद्ध हैं, और जैनियों की संख्या कम हो गई। कारण क्या है? हमने इसकी बहुत खोज करी, निष्कर्ष क्या पहुंचा कि हमारा दिमाग बस धर्मशाला बनाने में ही गया। हम लोग केवल जहां जरूरत है वहां तो मंदिर बनना ही चाहिए, उसका मैं मना नहीं कर रहा, अब यहां तो जरूरत ही था, तो जहां जरूरत नहीं है वहां भी मंदिर बनना है। लेकिन क्रिश्चियनों ने क्या किया कि यहां हॉस्पिटल और स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल और स्कूल। आज भी आपको नहीं पता, बंबई की झोपड़पट्टी में ब्लैकमेल के धंधे चलते हैं। ये इनकी पादरी जाती है वहां पर झोपड़ियों में और उनसे कहते हैं तुम्हें तुम्हारी बच्ची नहीं पढ़ती, जाओ कल से पढ़ने भेजिए इनको, और आपका बच्चा बीमार है हॉस्पिटल में भेजो, चलो हमारी तरफ से। तो वो उन जब वो शिक्षा में और औषधि में उनका उपकार किया तो वो उनके धर्म को अंगीकार कर लेती। ऐसे धीरे धीरे करके इस देश में बौद्ध और क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ गई जबरदस्त। हमारे यहां ये समस्या है, यदि किसी संस्था पे कोई लेटर लिखकर भेजेगा, एक समझ लेना आप कुंद कुंद कान पारमार्थिक ट्रस्ट को छोड़कर कह रहा हूं मैं, यदि कल को कहीं आपने कोई लेटर लिखकर भेजा कि ये पुस्तक चाहिए कृपया भेजिए, तो वहां से लेटर आएगा कृपया इस बैंक के अकाउंट में इतना पैसा जमा करा दें, ऐसा आएगा। और आज आप क्रिश्चियनों को लिखकर भेजें कि एक हमें बाइबल चाहिए तो तुरंत आ जाएगी तुरंत। तो ये भी एक तरीके से लौकिक उदाहरण दिया मैंने। सागर धर्मामृत में लिखा है अकेले उपदेश से स्थितिकरण नहीं होता। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो जीव किस भूमिका में है उसके हिसाब से स्थितिकरण होता है। ऐसा लिखा इसी रतनकण सावकाचार में, ये बहुत यथार्थ की बात कर रहा हूं मैं। आदर्श ऊंची बातें करना सरल है लेकिन जीवन में संघर्ष के समय धर्म से चुतना हो वो बहुत बड़ा सूरवीर होता है। सदा सुखदास जी ने लिखा कि जीव का बिगड़ जावे तो धर्म में मन ना ही लगे, लिखा इसी रतनगण सावकाचार में। जीव का बिगड़ जावे तो धर्म में मान, बाहर कर्जेदार खड़े हो और ये यहां बैठ के एमिक को खलू सिद्धो कर रहा हो तो वो कहेंगे जरा भाई साहब उनको जरा भाई साहब को बाहर भेजना, बोले साहब वो ध्यान लगा रहे हैं, सब उनको हाथ जोड़कर निवेदन करना वो ऐसा गहरा ध्यान न लगाए कि मेरा पैसा दिए बिना मुंह चले जाए। बहुत मुश्किल काम है, उपदेश देना सरल है। आज उपदेशकों की कमी नहीं है, व्यक्ति को उसकी भूमिका देखकर उसको कलेजे से लगाने वाला चाहिए। मैं कहता हूं कि पूरा पूरा समाज में परिवर्तन हो जाए जबरदस्त। आप करोड़ों उपदेश दो युवाओं को नहीं समझ में आएगा, बच्चों के उनको आप कंधे पे हाथ रखकर उनकी समस्या समझिए, उनको उनको क्या समझ में नहीं आता। ये ऐसा तक लिखा सागर धर्मामृत में, तो तन से धन से मन से हर चीज से स्थितिकरण होता है, पानी पिलाकर भी स्थितिकरण होता है, सब तरह से स्थितिकरण होता है। वो बात इसमें लिखा, निर्धन था थी, रोग थी, रोग से व्याकुल हो गया जाकर, तो अब एक धर्मी दूसरा धर्मी उसको कहेगा तुम घबराओ मत, हम है ना, तुम घबराओ नहीं हम है ना। अब किस पे समय रखा है, आज तो ऐसी स्थिति है कि एक धर्मी बीमार पड़ जाए तो और उसका अंतिम समय चल रहा हो तो पत्नी कहती तुम जल्दी से खाना खा लो, हो सकता है जाना पड़ेगा बोलो कैसी स्थिति है। जबकि मैं जब नागपुर में रहता था तो एक हमने समाधि कक्ष बनवाया था, कोई धर्मी बीमार हो जाए, सच्चा स्थितिकरण है, एक ऐसा कक्ष होना चाहिए अपने यहां कि उसको उठाकर घर से यहां ले आओ और परिवार वालों को कहो जाओ आप शांति से, अभी हमारी ड्यूटी है, स्वस्थ हो गए तो घर भेज देंगे और अस्वस्थ हुए तो समाधि दिला देंगे, ऐसा स्थितिकरण होता है। इस तरह से अकेले उपदेश से स्थितिकरण, घर में मान लो मां बाप अपंग हो गए हैं, चला नहीं जाता तो दुनिया को तो तीर्थ यात्रा कराओ, और पिताजी घर में बेचारे आंसू बहा रहे हैं, वो सोचते हैं कि बेटा बार बार ये कह देता तुम घर पे ही रहो घर पे ही रहो, तुम अस्वस्थ हो घर पे ही रहो, लेकिन उनके अंदर तो इच्छा है जाने की, अंदर इच्छा है, और बेटा ये सोचता लेके जाने में आधा पौना घंटा लगेगा, फिर इनके धीरे धीरे सीढ़ी से उतरेंगे ये लोग, तो माता पिताओं को तीर्थ यात्रा कराती, ये सच्चा स्थितिकरण है। अरे जिन्होंने पूरी जिंदगी जिन शासन की सेवा की और पूरी जिंदगी गुरुदेव को सुना और अब अंतिम समय वो देह से असक्य हो गई तो उनको देव दर्शन ही नहीं मिल रहा, विचारों को देव दर्शन नहीं मिल रहा, तो वो स्थितिकरण नहीं है। पूरी दुनिया को जिमण खिलाए और घर के मां बाप भूखे रह जाएं,
पूरी दुनिया में तत्व ज्ञान की बरसात करे और घर के माँ बाप उस तत्व ज्ञान से अलग रह जाएं, तो कैसा जन शासन है ये? सच्ची घटना है गुरुदेव के समय की कि सोनगढ़ में एक भाई आए हुए थे, महाराष्ट्र के थे, कहां के थे। उनके पिताजी बहुत बीमार हो गए और उनकी अंतिम स्थिति ऐसी चल रही थी। वहां बार बार तार आए, उस समय तो फोन उनका कहां जमाना था कि उनको भेज दो। वो कहते नहीं, अब तो हम गुरुदेव के चरणों में लग गई। गुरुदेव को मालूम पड़ा तो भरे प्रवचन में बोला, आप छोड़ो ये, पहले घर जाओ, घर जाइए, पहले माता पिता की सेवा करके आओ। स्थिति करण अकेला अंग उपदेश से नहीं होता। जहां ये जाने की धर्मी जीव तत्व ज्ञान को पढ़ा है, उस वो उपदेश से सुधरेगा, उपदेश से होता है। जहां देखा कि इसको ये इस कारण इसका धर्म से मन चलायमान हुआ है, तो उसको उस जाति का व्यवस्था की जाएगी, तो वो स्थिति करण। बहुत उदाहरण है ग्रंथों में, सैकड़ों उदाहरण। हम आपको सच कह रहे हैं, सच्चा मित्र जगत में वही होता है। ऐसे मित्र तो बहुत मिल जाएंगे कि जो तुम्हें नरक निबोध खींच कर ले जाए, पापों के दलदल में ढकेल दे, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। भरा पड़ा है विश्व ऐसा, लेकिन जो सच्चे मार्ग में लेकर जाए, वो मित्र बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत भाग्य से। जिसने पूर्व जन्म में जैन दर्शन की अनुमोदना की हो, उसको मिलता है। तो निश्चय से स्वभाव की उग्र महिमा से स्वयं अपने को अपने आप में स्थित करना, ये स्थिति करणांग है। और ऐसे ज्ञानी जीव को जिसको निश्चय सम्यक उत्पन्न हुआ, उसको बाहर में धर्मी को, पड़ोसी को देखकर धर्म में स्थिर करने का भाव आता है। कथा सुनना इसकी, बहुत अद्भुत कथा है इसकी। बच्चों सुनना है, बोलो, कथा सुनना है क्या? स्थिति करणांग की। अच्छा, ये कोई कल्पनाएं नहीं है, कथाएं। द्वादसांग में एक अंग कथा का ही अंग है कि जिसमें कथा की चर्चा है पूरे। स्थिति करणांग की कथा बहुत अद्भुत है, वो आप सुनिए।
क्या नाम था?
एक चंडाल पीछे था, डर की वजह से चक्र छोड़ दिया अच्छा उसमें Thank you.
जाएंगे उन्हें भरपाई होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्या काम पूर्ण हो जाएगा उसी मोहल्ले में जाने लगे जिस मोहल्ले में उसका आचार्य को मालूम पड़ गई किनको
Thank you.
अपराध माना जाता है। इच्छा की आरूढ़ होकर कर्म पाते दोबारा महल में जाने की इच्छा है तो इसको चलो जाके भरत अधिक जल्दी बोलो पुरुषार्थी तो भरत या बाहुबली अलग अलग तरह के विवाह हो गया रस्ते में। करने के लिए डेली उनके पास हमारे आचार्य को कुमार के तो देखो कल से आनंद कन्या भरोसे से आ रही होगा लेकिन बाघ मंडी देखो ये डेली मेरे पास प्रश्नों का समाधान जैसे वो कहानी आती है ना कि चिड़िया ने बरसात का समय था और बंदरों को ये बोला कि देखो हम तो छोटे छोटे पक्षी हैं और तुम बरसात में अपना घोंसला नहीं बना सकते और हम छोटे होकर भी घोंसला बनाते हैं। तो बंदर बोला बहुत घनी उपदेशक हो रही है अभी सुन तू, लेकर चिड़ियाओं के घोंसला तोड़ दिए जाकर। पात्र को उपदेश दिया जाता है, पात्र को स्थितिकरण किया जाता है। शराबी को कोई पैसा देकर शराबी का स्थितिकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका कोई गलत अर्थ लगा ले वो भी दिक्कत है। यह मुख्य रूप से धर्मी की चर्चा है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी चारों नियोग संबंधी जितनी मेरी ताकत है उत्तर दे सकता हूं। चरणानियोग का, द्रव्यानियोग का, कोई जिससे आपके मन में संशय रहता हो, कोई ऐसा किसी को प्रश्न हो, 5 मिनट मैंने उसके लिए रखी है। संकेत बोलो। हाँ वो वहां होना अलग चीज है। तो मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि किसी को धर्म में लगाना हो, अपने जिन शासन में लगाना हो, तो अकेले उपदेश से काम नहीं होता, उसकी आवश्यकता पूरी करी जाती है। और ये काम, ये साइकोलॉजी क्रिश्चियनों ने पहचानी, तो उन्होंने जगत को औषधि और स्कूल देकर, आज भी अच्छे स्कूल उनके माने जाते हैं उन लोगों के, और कितनों को क्रिश्चियन बना दिया। आपको शायद हिस्ट्री में घटना नहीं मालूम कि जब देश आजाद हुआ था उससे पहले इस धरती पर दिगंबर मुनिराज नहीं थे, 300-400 वर्ष तक एक भी, टोडरमल जी के समय भी नहीं थे, बनारसी दास जी के समय भी नहीं थे, मतलब बिगड़े हुए भी नहीं थे, भ्रष्ट भी नहीं थे, कोई था ही नहीं, रह ही नहीं सकते थे, मार दें, ऐसा युग था। तो बाद में जब देश आजाद हुआ तो शांति सागर जी हुए। वो कैसे थे मैं ये नहीं कह रहा, वो कौन भावलिंगी थे, द्रव्यलिंगी थे, नाम ने देखा उनको। तो उस समय अंबेडकर उनके पास पहुंचे, शांति सागर जी के पास अंबेडकर, और उन्होंने कहा कि हमारी जितनी चमार जाती है हम इन सबको जैन धर्म में दीक्षित करना चाहते हैं, आप इन सबको जैन बना लो, हमको जैन धर्म की दीक्षा दे दो, हम सब जैन धर्म स्वीकार करते हैं, और कल से हमें जिन मंदिरों में जाने का आदेश दे दो, हम वहां जो। तो ये घबराई और जैन समाज घबराई, तो वो जैन मंदिर गंदे हो जाएंगे, फिर तो भारी जन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो पूरा सब भ्रष्ट हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा, ऐसा हम छुआछूत में मर गए। ये जब हमारे यहां मना कर दिया गया तो उसके बाद बौद्ध गुरुओं के पास गए और बौद्धों ने उन सबको बौद्ध बना दिया। आज हिंदुस्तान में 40% जैन होते, प्रभाव कोई जाति, जैन धर्म जाति नहीं है, याद रखना। जैसे विदेही क्षेत्र में चारों ही वर्ण जैन हैं, वहां भी सड़क साफ होती होंगी, नहीं होती होंगी विदेही क्षेत्र में, तो क्या व्यंतर फूंक से साफ करते हैं, वहां भी आदमी साफ करता होगा ना सड़क को, वो भी जैन होता है, सैनिक भी जैन होता है। ये चार वर्ण कार्य के आधार से किए गए हैं, धर्म के आधार से नहीं। जैन तो धर्म है, जो धारण करे सो जैन, एक पशु भी जैन धर्म धारण कर सकता है, ऐसा है। तो स्थितिकरण की तो ऐसी स्थिति है कि मत ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति उसको धर्म में लगाना है, और वो इसके बिना संभव नहीं हो सकता कि जब तक उसको पुत्रवत प्रेम ना हो, पुत्रवत प्रेम ना हो व्यक्ति को, तो ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, अंतर है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी करोड़ों अरबों खरबों वर्ष संसार में रह सकता है, क्यों? उपशम इस काल में छाईक संकित तो होता नहीं, फिर से सुनना, और उपशम सम्यक दर्शन का काल केवल अंतर मुहूर्त है, नियम से 48 मिनट बाद मिथ्यात्व में आएगा। और छह उपशम सम्यक दर्शन उसको कहते हैं कि दिन में जो सैकड़ों बार सम्यक्त से मिथ्यात्व में भी आ सकता है, और मिथ्यात्व से सम्यक्त में, जरूरी नहीं आए आए, आ सकता है, लेकिन जिसको सम्यक्त सहित संलेख ना का नियम नहीं है, ये और सुनो, पंचम गुण स्थान से संलेखना का नियम है। यदि किसी जीव को नरकायु का बंद हो गया हो और सम्यक दर्शन भी हो जाए तो जरूरी नहीं है कि संलेखना पूर्वक देह छूटे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजा श्रेणी का, अंत में आत्महत्या करके मरे राजा श्रेणी का, सुनने में थोड़ा ऐसा लगे अटपटा सा, लेकिन सच्ची बात है, लगा कि मेरा बेटा मुझे मारने आ रहा है, पहले तो जेल में डाला अब मुझे मारने आ रहा है, तो इससे पहले बेटे के हाथ से मरे खुद ही मर जाए, तो जेल में जो सलाखें थी लंबी सी वो पीछे सर में देके मारी तो अंदर घुस गई और देह छूट गया। बोलो आप, समकिति के भी संलेखना का नियम नहीं है। यदि उसके पूर्व में खोटी आयु का बंद हो गया हो तो, लेकिन पंचम गुण स्थान से नियम से संलेखना का नियम है। इसलिए ऐसा लिखा, एक एक चीज दुर्लभ बताइए जगत में, पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ, फिर मनुष्यों में भी संगीत ये उत्तम कुल में जन्म, जैन कुल में जन्म लेना किसको कहते हैं भाई साहब? अब आपने, हम सब लोगों ने मुमुक्षुओं का टेस्ट देख लिया, हमारे स्वाध्याय, हमारी भक्ति, हमारे पंच कल्याणक, समझ लो। अब आप अन्य जगह जाओ तो ऐसा लगे जैसे रामलीला में आ गए, टेस्ट ही अलग है, मतलब जाति परिवर्तित हो जाती, मुमुक्षु घर में जन्म हो गई, माने सिद्धों से जाति मिलने लगी, साधारण बात है क्या ये, कितना बड़ा गौरव है। तो जैन कुल में जन्म लेना, वो भी मुमुक्षु कुल में जन्म लेना, इससे भी दुर्लभ है। तत्व निर्णय योग्य बुद्धि होना, उससे भी दुर्लभ है। और तत्व निर्णय होकर सम्यक दर्शन हो जाना उससे भी दुर्लभ है, और सम्यक दर्शन के बाद संयम होना इससे भी दुर्लभ है, और संयम के बाद समाधि मरण होना इससे भी दुर्लभ है। समाधि मरण को दुर्लभ से दुर्लभ कहा है। आप जानते हो मुनिराज के देह छोड़ने को जिनको केवल ज्ञान हो रहा हो उनको पंडित पंडित मरण कहा है। क्या कहा है? निर्वाण जाने को पंडित पंडित मरण कहा है। अज्ञानी के देह छोड़ने को बाल बाल मरण कहा है। अनंतों बार देह में आसक्ति करके मरा है, अनंतों बार। अरे अभी देह छोड़ रहे हैं और हो सकता है मोहल्ले में ही अपने में कुत्ता बन जाए जाकर। गुरुदेव ने मरी ने ढोर तसे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला विराधना के फल में एक क्षण में जाकर कहां से कहां पैदा हो जाता है, एक क्षण में कहां से कहां पैदा हो जाता है जाके मालूम नहीं पड़े। अरे आप कहोगे साहब ये तो किसी के साथ होता होगा, हमारे साथ नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो? 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती नरक चले गए, और आप जानते हो चक्रवर्ती नियम से सम्यक दृष्टि ही होता है, और सम्यक तो साथ लाते हैं। जैन कुल में जन्म लेकर सम्यक तो लेकर भी परिग्रह में आसक्त होकर पापों में आसक्त होकर मरे, और जाकर सातवीं नरक में जाकर 2-2 चक्रवर्ती नरक चले गए। अब क्या करोगे? इसलिए समाधि मरण को और दुर्लभ कहा सम्यक से भी, क्योंकि समाधि मरण संयम में आता है, संयम के अंदर। तो इसलिए भगवती आराधना में शिवकोटी आचार्य ने कहा कि जो एक बार कुमरण ना करके सुमरण करे, नाम मरण है वास्तव में तो भेद विज्ञान पूर्वक देह छोड़े, वो 7 या 8 भव में निर्वाण को प्राप्त होता है। और बोलिए। हाँ जी हाँ, दोनों की कोई समकिति जो शुद्धोप सम्यक दृष्टि को भी लगातार तो शुद्धोपयोग नहीं होता, मुनिराज को भी लगातार शुद्धोपयोग नहीं होता। तो जब सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग में नहीं है तब सविकल्प दशा कहलाती है। तो वो शुभाशुभ भाव में घर गृहस्थी चला रहा है, दुकान मकान चला रहा है, बच्चों को खिला रहा है, शादी ब्याह कर रहा है, लेकिन जब वो पुनः स्वरूप का अनुभव करने के लिए उद्यम करेगा तो उस समय जो पूर्व के विचार कैसे चलते हैं उसका वर्णन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में किया। मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ये भी स्थूल नहीं बिल्कुल गहरे। और एक अनादि मिथ्या दृष्टि जब पहली बार शुद्ध उपयोग करेगा उसको भी ऐसे ही विचार आते हैं, उसको आगम के द्वारा यथार्थ निर्णय किया पहले उसने कि मैं सिद्ध समान हूं, तो स्वरूप में जाने से पूर्व उसको ये चिंतन चलता है और स्वरूप की अनंत महिमा, तो महिमा के आवेग में विचार विलय को प्राप्त हो जाते हैं और विचार स्वरूप में तन्मय हो जाते हैं, उसको निर्विकल्प अनुभूति कही। विचार माने उपयोग, उपयोग कहो या मन कहो। आगे तो बहुत जबरदस्त प्रश्न किए, माथा झन्नाटा आ जाए कि वो जो अनुभव हुआ आत्मा का वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है। कल आएगा इसका उत्तर, ये जिसने बिना अनुभव वाला इसका उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए आप भी यदि आत्मा का अनुभव करोगे और मैं भी आत्मा का अनुभव करूंगा तो पूर्व में ये चिंतन चलेगा सूक्ष्म, एकदम अचानक झटके से नहीं हो जाएगा शुद्धोपयोग। झटके से भी होता है, किसको? जिनको बार बार स्वरूप में जाने का अभ्यास पड़ गया उनको, जैसे मुनि भगवंत आहार लेते लेते अब इधर लिया आंख बंद हुई, हथेली का आहार निर्दोष हथेली में, इधर मुंह में गया इधर शुद्धोपयोग भी कर लिया, लोगों को मालूम नहीं पड़ता, इतना अल्पकाल है शुद्धोपयोग का। बहुत गजब की चीज है, उसका सारी रात चिंतन करें। उस दिन समझना शुभ घड़ी उस दिन आने वाली है जिस दिन से आज से ही आपको इस बात के स्वप्न आने लगे कि मैं बैठ के सामायिक कर रहा हूं, मैं मुनि बनकर वन जंगल में बिचर रहा हूं अभी तो हमें स्वप्न भी परिग्रह के आते हैं, इस लौकिक चिंता लौकिक स्थूल पर्याय की चिंता ज्यादा है। टोडरमल जी ने लिखा है, इसी पर्याय की सुधार बिगाड़ के प्रयत्न करता देखा जाता है, इससे लगता है कि तुझे शाश्वत आत्मा के प्रति विश्वास कम है। इसकी क्या चिंता करना वर्तमान पर्याय की है, कितनी सी। भगवान महावीर 70 वर्ष जिए कुल, अब कई लोग तो 70 से ऊपर के 83 बाबूजी पिताश्री का बोलो आप 70 और मतलब समझ लीजिए उसमें 25 वर्ष पढ़ने में निकल जाते हैं आजकल, 5-1 वर्ष सेटलमेंट में निकल जाती है, तो आधी जिंदगी तो ये गई, फिर बची जिंदगी को बर्बाद करने के लिए विवाह हो जाता है। फिर वो उसके जो बची जो बात के 30 वर्ष हैं वो केवल इसी में निकलते हैं, मैं भी एक दिन राजा बनूंगा, मैं भी एक दिन मोदी बनूंगा, अंबानी बनूंगा, ऐसे विचार नहीं आते। वो तो बने या ना बने, क्योंकि उदयाधीन है, यदि जितनी मेहनत वहां करता है उसकी शतांश भी इधर इधर करे कि मैं भी एक दिन अकलंक देव बनूंगा, मैं भी एक दिन मुनिराज बनूंगा, मैं भी एक दिन आत्मा की अनुभूति लूंगा, तो यहां से अनुभूति लेकर उठे, क्योंकि वो जो इच्छा कर रहा है वो उदयाधीन है, और इधर की जो तू बात कर रहा है ये पुरुषार्थ के अधीन है, ये उदयाधीन नहीं है। अनुभूति पुरुषार्थ के अधीन है और अंबानी होना उदय के अधीन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसा पैसा भी किस काम का कि जहां दो सगे भाई एक साथ नहीं रह सके। बोला काय का पुण्य का उदय, कैसे काय का पुण्य का उदय, इसको पुण्य का उदय कहेंगे पाप का उदय कहेंगे? इससे तो साधारण पैसे वाले अच्छे हैं, जिनके पेट पूरे नहीं भरते उनके भाई साथ तो रहते कम से कम, तो अधिक पैसे ने क्या किया, भाई को भाई से जुदा किया और क्या किया। अरे काय के सुख है, कहनी दीवार में सुख होते हैं क्या, कोई दीवार में सुख है क्या, काय का सुख है, कैसा सुख है, सोचने की बात है। इसलिए इस भव में केवल यही करने जैसा है, दूसरा नहीं। यार बन्नत ऐसा लिखा टोडरमल जी ने, ये अवसर चूक गए, ये अवसर चूक गए तो दोबारा मनुष्य पर्याय मिलना मुश्किल है। ऐसे बहनों को देखो ऊंची ऊंची शिक्षाएं पढ़ रही हैं आजकल लड़कियां स्कूल में क्लासों में, भैया ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई धरती को लांघने जा रही है। पता नहीं मन स्त्री पर्याय एक तो पूर्व पाप के उदय से होती है और वर्तमान में वो पूरी जिंदगी केवल धन संचय करने में लगाया, अब यही उम्र तो आत्मकल्याण की है और यही उम्र सर्विस बिजनेस में लगा दी, तो आत्मकल्याण कब होगा, अब अनंत काल के लिए स्त्री पर्याय और निश्चित हो गई। स्त्री पर्याय मिलना भी पुण्य के उदय से, बल्कि स्त्री देह छोड़कर अगली पर्याय में त्रियंचनी बने, यहां की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्त्री पर्याय की महिमा आई ना अंदर से। लिखा नहीं बहन श्री के वाक्य पढ़ो कितनी बैरागी थी, हमारे बाबूजी तो कहते थे कि बहनों को इस भव में केवल घर में रहकर भेद विज्ञान की कला सीखनी चाहिए यदि आत्मकल्याण करना है तो। वो समझ में नहीं, बात बची पेट भरने की तो श्रीमद जी से मिल लो, छाछ और रोटी की तेरे पास व्यवस्था है तो निवृत्ति ले ले, निवृत्ति आत्मकल्याण के लिए निवृत्ति ले ले। तो साधारण बात थी ना, गांधी जी राम जी भाई जी जैसे अपने अपने व्यापार को ठोकर मार के सोनगढ़ पहुंच गए ये, लेकिन एक बार ऐसा लक्ष्य बन जाए, अभी लक्ष्य ही नहीं बना, अभी तो ऐसा लग रहा है आऊ आऊ ऐसा लग रहा है व्यक्ति को, इसका इसमें उसको सुखी नजर नहीं आ रहा और जगत के जूता खाने में सुख नजर आ रहा है। बोलिए, हाँ बोलिए, बस 5 मिनट 2-4 मिनट हो रहे हैं, चलो हो गया समय, बोलो। हाँ हुआ, और वो जब हुआ था वो उस पर्याय का नाम है विश्वनंदी, विश्वनंदी राजकुमार थे वो। ऐसा था कि जिसको सम्यक्त्व हुआ हो तो सम्यक्त्व होकर वो पहले स्वर्ग गए और वहां से नीचे उतरे तो त्रिपिष्ट नारायण बने और तीव्र कसाय के कारण सम्यक्त्व छूट गया और फिर वो मर के नरक गए, ऐसा हुआ। मतलब एक बार सम्यक्त्व हो जाए तो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल वो अधिकतम संसार में रह सकता है, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन कोई छोटा मोटा काल नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अनंतवे भाग में अनंत सागर है। अरे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? अनंतवे भाग में अनंत सागर है, लेकिन समाधि मरण के साथ ये नियम नहीं है। एक बार समाधि मरण हो गया तो अधिकतम 7 या 8 भव में मोक्ष चला जाता है। इसलिए सम्यक्त होकर उसको कायम रखना यह भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। भैया ये बाकी सब चीजें तो अनंत भाव में, अनंत भव में अनंत बार मिली, और ये तो सब छूटने वाली हैं। इसी पर्याय में तुम्हारे साथ सामने देख लेना, सब कुछ यही होगा, सब कुछ यही दिखाई देगा। ये वर्तमान में किसी का पुण्य अखंड नहीं रहता, ये काल में जिसमें हम जन्मे हैं पूर्व की पुण्य की उदीर्णा हो जाती है, लेकिन यदि हमने धर्म पुरुषार्थ किया उसे कोई नहीं तोड़ सकता, आराधना को कोई नहीं चुरा सकता, आराधना को कोई खंडित नहीं कर सकता। पूरा विश्व भी तुम्हारा दुश्मन बन जाए और तुम आराधक हो तो समझना तुम्हारी केवली से मित्रता हो गई है। चलो हो गया समय।
चरण कने धरु आत्मा थी सौहीन ते तो प्रभुए आपियो।